शांति। बाबा के अनन्य रतन आदरणीय भ्राता प्रेम जी का हम सभी अभिनंदन करते हैं। एक हाथ की ताली बजा करके बहुत बहुत अभिनंदन है। आप आए हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। आज का जो स्वमान लिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विशेष भाई जी आज उस स्वमान की अनुभूतियों की ओर कैसे जाया जाए और उसको अपना स्वरूप कैसे बनाया जाए, जीवन में कैसे उस स्थिति में जिया जाए, उस पर खास हमें मार्ग प्रदर्शन देंगे। आप बाबा का यज्ञ का वो पिल्लर हैं जिसने 1969 में बाबा को पहचाना और 1969 में ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया, जिसको बाबा झाटकू कहते हैं। तो वो झाटकू के दर्शन आप सामने कर सकते हैं कि छोटी आयु होते हुए भी ये अंतर्दृष्टि इतनी तेज, जो निराकार शक्ति के अवतरण को समझ सके और उस समय जीवन उनकी सेवाओं में लगा सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अपना जो सोशल सर्विस विंग है, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और उसको कंधा देकर के सोशल विंग को आपने बहुत आगे बढ़ाया है। गुलबर्गा से आप हैं और वहाँ की भी चारों तरफ के एरिया की सेवाओं का बहुत मुख्य कारण है। आप अनुभूतियों की खान हैं, तपस्वी मूर्त हैं और बाबा से अत्यधिक प्यार होने कारण हर एक आत्मा तक उस प्यार का प्रसारण करते रहते हैं। आज हमें शक्ति स्वरूप बनना सिखाएंगे आदरणीय भ्राता प्रेम जी।
ओम शांति। अनीता बहन का धन्यवाद, बहुत अच्छा परिचय कराया। हम जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो पहला पाठ हमें पढ़ाया जाता है कि मैं है ना, सिंपल वर्ड है। कभी गृहस्थ जीवन में रह करके पढ़ाई लिखाई करते, धंधा दौरी करते, सोचा ही नहीं था कि ये आत्मा का अनुभव भी कभी हम कर सकते हैं। हम तो इसी धारणा में थे कि कोई आत्मा के बारे में चार शब्द बोल लेता है, ये पापी कान सुन लेते हैं तो हमारा जीवन चरितार्थ हो जाता है, ऐसा हम मान बैठे थे। कोई भी विद्वान पंडित हमारे, वो बार बार यही कहता था कि ये हमारी पहुंच के बाहर के विषय हैं, आत्मा जो कि अदह्य अक्लेद्य अशोष्य अमारुत ऐसा मानते हैं आत्मा को। गीता का दूसरा अध्याय भरा पड़ा है आत्मा के परिचय से। फिर भी क्यों नहीं कोई आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया? इसीलिए कि था नहीं कोई बोलने वाला, सब विद्वांस थे, विषय को लंबा चौड़ा करके बोलते थे। अभी दिल्ली में जो गीता सम्मेलन हुआ उसमें एक पंडित ने कहा कि मैं एक श्लोक का अर्थ एक महीना बोल सकता हूं, और महीने के बाद भी उस जो श्रोता है उसको समझ में कुछ नहीं आता है। अब हम आत्मा क्या है, जैसे कहा मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये जो पहले हम देखेंगे ना, ये शक्ति क्या चीज होती है ना, वो आत्मा के चित्र को आप सामने लाएंगे, उसमें एक बिंदु आत्मा, उसके तीन पेंडुलम मन और बुद्धि और संस्कार दिखाते हैं। और आत्मा फिजिक्स के अनुसार क्या कहा जाता है कि मैटर डजंट मो इटसेल्फ, जो वस्तु है वो खुद चलती नहीं है। फिर एनर्जी मोज द मैटर, वस्तु को एनर्जी माना शक्ति चलाती है। अभी शक्ति एनर्जी क्या चीज है तो कहा जाता है कि एनर्जी इज नाइदर टू बी प्रोड्यूस्ड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होता है, पैदा नहीं की जा सकती ना कोई उसका विनाश होता है। ये थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में। अब इसको यहां ले आएंगे, ये आप शरीर द मैटर, शरीर खुद कहीं भी नहीं चलता है, शरीर जड़ है। परंतु कई बार ऐसा लगता है कि नहीं शरीर ही, ऐसा लगता है नहीं, सारी दुनिया ये मानती है कि यही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है और शरीर के लिए ही सारा हपधपी दौड़ मनुष्य की है। मनुष्य पढ़ता है स्कूल में, नौकरी करता है, धंधा करता है, कमाता है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है, किसी प्रकार से इस पाप के गड्ढे को भरना चाहिए, ऐसा मानते हैं ना। तो शरीर के पीछे ही सारा मजमा जमा हुआ है। साधु संन्यासी भी जब प्रवचन करते हैं ना, उनके पीछे भी यही होता है कि किसी भांति हमें हमारा पेट भर जाए, और कुछ नहीं होता है। पर जब हम यहां आते हैं तो यहां फिर हमको ये बताया जाता है कि नहीं, ये शरीर मैटर है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, ये ऐसे असेंबल हुआ हुआ है, जमा हुआ हुआ है, और जो असेंबल होता है वो डिस्पर्स होता है, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बना है वो बिखरेगा। अब न बिखरने वाली क्या चीज होती है, वो है शक्ति एनर्जी, और वह शक्ति जो है उसको हम सिंपल शब्द देंगे आत्मा। आत्मा ही शक्ति है और ये शरीर का जो संचालन हो रहा है वो शरीर का संचालन हो रहा है वो आत्मा ही करती है। अब हम जैसे योग करते हैं तो कहते हैं आंख खुली रख करके योग करना चाहिए, ठीक है ना, ये पक्का है, पक्का है। मैं कई बार देखता हूं ना, कोई ऐसा बैठता है, कोई ऐसा बैठता है, कोई ऐसा बैठता है, मुझे योगी कहां हुए हैं, योगी तो ऐसा बैठता है, ऐसा बैठो पर आंख खुली। ये जो बाबा यहां रखा हुआ है या जो बहन है भाई, तो वो दृष्टि देते हैं, हम लेते हैं, क्या होता है, इससे एनर्जी फ्लो होती है, आपको पता होना, क्योंकि शरीर में एक ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेन, पारदर्शी अवयव आंख है। और बाबा मुझे शक्ति देना या भगवान पिता परमात्मा धरा पर आया ही आत्माओं को शक्ति देने के लिए। कैसे, देखिए, कोई भी बात धारणा की ज्ञान में नई नहीं है, नथिंग न्यू जैसे बोलते हैं ना, नई नहीं है, सब पुरातन है। उसको बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसको कहा जाता है वो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये समझते थे लोग अध्यात्म चिंतन, भगवत प्रार्थना, भगवत चिंतन करना वानप्रस्थ अवस्था के बाद। जब हम छोटे इसमें आते थे तो कहा जाता ये टाइम नहीं है अभी तुम्हारे जाने का, शादी कर लो, बच्चे होंगे, जब आप बुजुर्ग तब तब राम राम बोलो, कहां बोलेगा, लाम लाम बोलेगा। तो अब बाबा ये समझा रहा है कि आंख खोल करके करो, तो कहते आंख चंचल है ना, वो इधर इधर देखती है, हम कहते उसको आंख चंचल है ना, छोड़ दो उसको, तुम सामने देखो, आंख इधर उधर देखे पर आप सामने ही देखना, कहते ये आप सामने ही देखना, तब उसको पता पड़ेगा नहीं कि आंख चंचल तुम गलत बोल रहे हो, अपनी कमजोरी किसी दूसरे पर डाल रहे हो। यू बीइंग एन एनर्जी मोटिवेटर, आप एक शक्ति हो और देखने का कार्य आंख नहीं करते, ऐसे निकाल करके ऐसे रखें क्या देखती है, क्या आंख नहीं देखती है, नहीं देखती है, फिर कौन देखता है? मैं देखता हूं। बोलने में ऐसे मैं देखता हूं, और मैं देखता हूं कैसे देखते हो? आंखों से। आंखें किसकी हैं? मेरी हैं। और जो भी चीजें आंखों से देखी जा रही हैं वो भी मेरी हैं, और जो मेरी चीज है वो मैं नहीं हूं। किसको भी आप ये मेरा ये मेरा ये मेरा जिसको भी बोलिए, मेरा जो है वो मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं, फिर मैं इस मेरे से भिन्न हूं। जो मेरी चीज है उसको देखा जा सकता है, जो मेरी चीज है उसको छुआ जा सकता है, जो मेरी चीज है वो मैं नहीं हूं। जैसे घर है, किसका है? मेरा है। पर मैं घर नहीं हूं ना, फिर मैं कौन हूं? मैं घर में रहने वाला हूं। ये ड्रेस मेरा है, मैं नहीं हूं ना, मैं कौन हूं फिर? इस ड्रेस का धारक, धारण करने वाला। तो इस शरीर के अंदर जो चेतना है, एनर्जी है, शक्ति है, मैं हूं। जब मैं शक्ति हूं ऑलरेडी, अब उसको रिकॉग्नाइज करना, उसका अनुभव, एहसास महसूस करना, ये अब संभव है। अभी संगम पर संभव है। क्यों? क्योंकि वो जो पिता परमात्मा ज्ञान हमको दे रहा है बाबा, पर ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान के साथ ज्ञान को धारण करने की एनर्जी शक्ति भी देता है। देखिए गीता में कहा गया, नरकस्य त्रिविधम द्वारम। नरक के कितने द्वार? तीन द्वार है, काम क्रोध लोभस्त था, काम क्रोध और लोभ। फिर आगे डायरेक्शन दिया गया, तस्मादेत त्रयम त्यजेत, इन तीन का त्याग करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। हर विद्वान, हर पंडित, हर महंत संत मंडली सब यही बोलेंगे, पर छोड़ता कौन है? नहीं छोड़ पाया, छोड़ता नहीं, छोड़ नहीं पाया। वो स्वामी लोग भी नहीं छोड़ पाए, कुछ एक ऐसे गिने चुने होंगे जिन्होंने हिम्मत की। काम छोड़ा मगर क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा ना, बिना वो क्या बोलते हैं आप, धन के कोई प्रवचन भी नहीं करता है। तो न लोभ छोड़ा, न मोह छोड़ा, नहीं छूट पाया। आज ये हम जो बाबा के बच्चे हैं, न हम पंडित हैं, न विद्वांस हैं, न शास्त्रों का कोई गहरा ज्ञान हम लोगों को है, परंतु हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति आई हुई है कि हम ये जो कहा गया कि भाई काम, ये जो काम रूपी दुरासद शत्रु है इसको जीत, तो हम जीत पहनते हैं ना कि नहीं पहनते? किसने दी ये ताकत? वो सर्वशक्तिवान ने दी। हमको कहा कि तुम भी मास्टर सर्वशक्ति, मैं परमात्मा पिता तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान, और मैं उसकी संतान, ऑटोमेटिकली मास्टर बन जाते। हिम्मत तो की ना कि हमको ये जो यम, ये जो पतंजलि योग बोलते हैं ना, अष्टांग योग में उन्होंने पहले दो छोड़ दिए, बाद के दो पकड़े, और बाद के दो पकड़ने में सफल पकड़ा, परंतु क्यों नहीं सफलता होगी उसमें? क्योंकि पहले दो जो यम है, नियम है, तो अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, हम, मैंने कहा हम कोई नई भाषा, नई धारणा नहीं बोल रहे हैं, ये यम की जरूरी है ना। अहिंसा चाहिए मनुष्य में, बाबा ने कहा डबल अहिंसक तुम बच्चे हो, और वो ताकत भी दी, बिना ताकत के हम यहां तक नहीं पहुंचे। आज हमारी जो माताएं नीचे हैं 20 साल 25 साल वो चल रही हैं ज्ञान में, और उनमें जो ताकत, माताओं में इतनी ताकत भरना कम बात नहीं है। जो कहा गया कि नारी नरकस्य एकम द्वारम, नरक को जाने का एक, वो नरकस्य त्रिविधम, तीन द्वार बोला ना, पर इन सन्यासियों ने क्या किया? तीन द्वार छोड़ यार, ये एक ही द्वार ले, क्योंकि उनको उनसे इतनी घृणा भर दी, पूछना नहीं चाहिए। तो वो घृणा के आधार पर कहा कि नारी नरकस्य एकम द्वार, एक ही द्वार है, आग कापू से एक तरफ नहीं रह सकते। और भगवान ने सिखाया कि बच्चे तुम गृहस्थ जीवन में रह करके कमल पुष्प समान रहो, ये तब भी संभव है जबकि हम वो शक्ति की धारणा करते हैं जो बाप खुद हमको देता है नैनों से, आंखों से। वो आंखों से हमारी तकदीर की तस्वीर खींचता है, ऐसा है ना गीत, आंख नैनों से तकदीर की तस्वीर खींचने वाले। तो वो हम कभी कहते तो आप देखो, आप दृष्टि लो, महत्व तो दृष्टि का ही है। ये दृष्टि से सृष्टि रची जा रही है और दृष्टि से ही शक्ति का हमारे अंदर इनपुट होता है, आता है हमारे अंदर। तो इसीलिए कोई क्लास में बैठ के दृष्टि, मैंने एक भाई को बोला आप दृष्टि क्यों नहीं लेते हैं, तो कहा नहीं मेरे को ये बोला गया है, वहां जाओ पर देखो नहीं। आपको पता है जब हम ज्ञान में है शुरू में बोला जाता था तुम ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हो, हाँ जा रहे हैं, तो जाओ परंतु उनको देखना नहीं, मतलब क्यों, वो आंख में तुम्हारे सुरमा डाल देंगी। और सुरमा बहुत हमारे यज्ञ में चला आया है, तो आंखों में सुरमा देखते ही क्या होता है, क्या होता है, बाबा की एनर्जी फ्लो होती है। आप यज्ञ के इतिहास में साकार बाबा को देखेंगे कि बाबा जो हमारे साउथ में आई दादी हृदय पुष्पा, 6 मास के अंदर उनके पति ने शरीर छोड़ा, तो ऐसे उन दिनों में घूंघट बांध वैसे डाल के बैठते थे। बाबा उनके सामने गया, बाबा ने कहा कि बच्चे घूंघट के पट खोल, देख तेरे सामने कौन ठहरा है, कौन खड़ा है। तो जैसे ही उसने देखा, ओम शांति, क्या हुआ, शक्ति फ्लो हो गई। फिर कहा दुनिया में यदि कोई खुशी संतुष्ट इंसान है तो मैं हूं। ड्रेस्टिक वंडरफुल चेंज आ गए ना, ऐसे हम सब अनुभव करते हैं। कोई अब बैठ करके हे बाबा मुझे दुख, मैं दुखी हूं, ऐसा बोलेगा कोई भी के बोलेगा नहीं, तो इतनी ताकत इतनी एनर्जी कहां से आई। फिर हम मास्टर सर्वशक्ति किस आधार पर इसके पीछे पड़ना, या हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, हमको शक्ति बाबा दे रहा है और वो हम ले रहे हैं। अब वो ज्यादा या कम क्यों, क्योंकि हम कहते जितना हम ओपनाइज है, जैसे कहते हैं ना तुम कान खुले रख के सुनो, ऐसा बोलते हैं ना, हम कहते कान खुले रखो न रखो, आंख खुली रखो। तो क्यों ऐसे आंख, कई कहते मैं सुनता हूं, आप सुनते हो पहले शब्द सुनते हो और जब क्या सुना तो लास्ट के 1-2 शब्द सुनते, बीच में गायब हो जाते, ऐसा है। पहले लगता है माया देवी हमको ऐसा मोहित कर देती है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बाद में पता ही नहीं पड़ता है कि ये दोनों कान बंद हो जाते, ऑटोमेटिक बंद होते, नियम है ये, आंख बंद तो कान भी बंद पक्का। इसीलिए यदि मुझे शक्ति लेनी है तो दृष्टि एक ही आधार है। आप कहेंगे दृष्टि आधार है तो बाबा तो योग के ऊपर महत्व देता ही है, योग करो योग करो, कई कहते हैं हम तो योग करते हैं, हम योग करते हैं, बाबा शक्ति देता है, अच्छा देता है, पर हम उसके पीछे कहते हैं योग करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, कैपिटल चाहिए ना, हाँ भंडार चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा मुरली से, ज्ञान। बिना ज्ञान की गहराई के, हाँ लौकिक, जैसे हम कहते हैं कि देर इज द एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में ज्ञान का विस्फोट है, इतने पीरियोडिकल्स क्या बोलेंगे वह, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मास पत्रिकाएं, दैनिक पत्रिकाएं, वो लाइब्रेरीज, ई लाइब्रेरीज बहुत बहुत है, बहुत है, परंतु हमारे को उनकी जरूरत अब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने समझ लिया है कि वो ज्ञान भौतिक है, अब हम अधिभौतिक ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, वो फिजिकल ज्ञान है, अब हम मेटाफिजिकल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान कहां मिलता है, यहां मिलता है। कई संस्थाएं बोल रही हैं आजकल हम धार्मिक नहीं है आध्यात्मिक है, गलत हो, आध्यात्मिक माना जहां आत्मा का ही अध्ययन किया जाता है, कोई कहानी कोई नाटक कुछ भी नहीं चलेगा उसमें, ठेठ सीधा ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो वो हम यहां देखते हैं। तो ज्ञान कहां है, हम कहते कहीं भी नहीं, मुरलियों में है। अब मुरली हम आ गए ना यहां ज्ञान में आ गए, तो हमने ये समझ लिया कि हम सबको समझ गए, आत्मा समझा, बाबा समझा, ड्रामा समझा,
और क्या चाहिए, 84 जन्म समझ लिया, अब तो हम मुक्त हो गए पढ़ाई से। मेरे को ऐसे लगता है कई बार हम भाई बहनों से मिलते, हम कईयों से पूछते, आपने जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी पढ़ी क्या, योग की सिद्धि और विधि पढ़ी क्या? तो नहीं पढ़ी तो नहीं है, पढ़ा भी तो एक आध पेज पढ़ लिया होगा। हम कहते पढ़ो ना, शक्ति मिलती है। जिन माता बहनों ने क्या हिम्मत की इस ज्ञान को अपनाने के लिए, आज सरल है जी। आज क्यों सरल है, क्योंकि बहुत लोग इसमें हैं और ज्ञान का मक्खन निकल आया बाहर अभी। पर वो दिन जबकि ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था थी, समझ ही नहीं थी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो रामकृष्ण की कहानी सुनी थी, सीता द्रौपदी को सुना था, रावण कंस को सुना था, उसके अलावा कुछ हमको ज्ञान नहीं, हम तो वही मान बैठे थे। यहां तो ये बातें अलग ही हैं। तो एक एक बात ज्ञान की हमारे अंदर नई शक्ति, नई प्रेरणा, नई एनर्जी भरती है। इसीलिए वो जरूर कहेंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ऐसा बोलते हैं। पर हम कहते पोथी न पढ़ो पर मुरली तो पढ़ो। हम रोज क्लास में जाते हैं। मेरा अनुभव ऐसा है, ये भी जैसे कि हम रोज मंदिर में जाते हैं, एक हैबिट पड़ जाती है, हॉबी हो जाती है ना। पर वो एक घंटे के अंदर आधा घंटा जो मुरली सुनते हैं, कितना अंदर आत्मसात होता है, तो कितना हम असिमिलेट कर जज्ब डाइजेस्ट कर पाते हैं, कभी हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और देना जरूरी है। देखिए एक MBBS पढ़ता है, इंजीनियरिंग डॉक्टर पढ़ता है, इन दिनों में MCA MDA MTA क्या क्या पढ़ते, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग एक सर्टिफिकेट के लिए। अब यहां नरो नारायण, यहां जो विद्या दे, नर से नारायण बनना है, फोकट में ही बनेंगे। अब जिस हाल में चल रहे हैं उसी हाल में बनेंगे। मेहनत चाहिए ना, वो दिन रात पढ़ाई पढ़ते हैं, हम दिन में थोड़ा तो समय दें। मैं कहता कई बार भाई एक दिन में एक पेज तो अवेक समझिए, आजकल सेंटर्स में वाणी साकार मुरली जेरोक्स करके मिलती है, कई केंद्रों में मैंने देखा, समझो नहीं मिलती है, नहीं बहन देती है, कोई बात नहीं, अव्यक्तवाणी की पुस्तकें तो मिलती है। अब अव्यक्तवाणी क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी सारी मुरलियों के सार हैं। साकार मुरली में बाबा कभी इधर बोलता है, कभी इधर बोलता है, कभी उधर, कभी किधर, पर अव्यक्तवाणी एक विषय को लेकर के चलती, जैसे आज बाबा ने बोला मुक्ति, जीवन मुक्ति। हमको है ताकत इतनी है कि हम अब मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था में यहां अनुभव करते हैं मुक्त बुराइयों से। हम मुक्त हैं, नहीं पूरा नहीं हुए, परंतु होने की लालसा अंदर में भरी पड़ी है ना, बिना उसके हम यहां कैसे पहुंचे, एक बात। दूसरी बात, जीवन मुक्त अवस्था सतयुग को बोलते हैं, नहीं हम कहते यहां होनी चाहिए जीवन मुक्त अवस्था। माया मोह से दुख अशांति से निकल गए, पर सुख शांति का अनुभव भी इधर ही होता है। सतयुग में होता है नहीं होता है वो मेरे को तो पता नहीं अभी तक। नारायण बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, पर ये तो गारंटी ले सकते हैं कि हम यहां जीवन से मुक्त हैं। हमें न शारीरिक पीड़ा पीड़ित कर सकती है, न लौकिक गृहस्थ जीवन की पीड़ा पीड़ित कर सकती है। ऐसा जीवन होता है, जो हमारा लड़का बीमार होता है तो मां बीमार होती है, बराबर है क्या? पीड़ा होती है, मेरा लड़का क्या करना, खाया नहीं पिया नहीं, मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं करो, शांति से बैठो, उसको ट्रीटमेंट दो। तो ऐसा ज्ञान, हाँ, और सारा चिंतन चलता है लौकिक का, लौकिक का। आजकल माँ बाप को बेटों के चिंतन नहीं, पोते पोतियों का चिंतन बहुत चलता है। वो कहते क्या हूं बैठे हो, जाओ ना वो पोते को संभालो, वो बोलती है, बहू बोलती है या बेटा बोलता है, हम तो जा रहे काम पर, तुम्हारा तो पूरा हो गया अभी। तो ऐसा हमारा जीवन तो नहीं, ये बद्ध जीवन हो गया, बुद्धि जीवन नहीं है ना। इसीलिए हम थोड़ा उससे ऊपर उठ रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जो देह है, शरीर है, कल तक क्या किया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रियों का प्रयोग इंद्रिय के लिए किया, आंख का देखना क्या देखना, बाहरी दुनिया देखना, कान का बाहरी दुनिया की बातें सुन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आंखों से आत्मा को देखो, यहां बाबा की बातें सुनो, बाबा की बातें बोलो और बाबा की सेवा में ये हड्डियां लगाओ, दधीची बनो। किसकी सेवा करते हैं हम? जब गृहस्थ में हैं तो हम किसकी सेवा करते हैं? थोड़ा सा सर्वे करेंगे ना, सवेरे से शाम तक का जीवन हमारा लौकिक में चला जाता है, लौकिक में चला जाता है। माताएं होती हैं तो देखिए आप, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, शाम का भोजन बनाओ, बिजी हो गए, घंटा आधा घंटा केंद्र में जाएंगे। पर शक्ति कहां से मिलती है? अध्ययन से। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय दो में आलस नहीं करना चाहिए, दो बातों में आलसी नहीं बनना, एक स्वाध्याय एक प्रवचन। स्वाध्याय में कभी आलस नहीं करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, और जो पढ़ा उसको चरवण करना ही योग है, योग और कुछ नहीं है। बाबा बाबा बोलना नहीं, बाबा तो है ही है, परंतु ज्ञान का चरवण मंथन करते हैं, ज्ञान जो पढ़ा उसको चिंतन में लाओ, बार बार लाओ, जितना उसको लाएंगे वो मंथन होगा। फिर वो बातें अंदर याद आएंगी, याद की यात्रा पर रहो, मन याद आएंगी उस यात्रा में चलो। तो स्वाध्याय में कभी आलस, अध्ययन करो। ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत सुंदर है, बहुत लचीला फ्लेक्सिबल है और आत्मा को एनर्जी देने वाला है। इसीलिए इस ज्ञान का अध्ययन हम जितना करेंगे ऑटोमेटिकली, ये जो बहुत बड़ा शब्द है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो हमको अनुभव में आएगा। एक अध्ययन देखते हैं हमारी दादियों का, साकार बाबा का जीवन, दादी, मैंने इसलिए ये कहा कि अद्भुत जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी जो है, मजा आता है उसमें चरित्र पढ़ने में। एक ही ये संस्था है जिसके आदि पिता ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन हमको पता नहीं, हर संस्था में उनके गुरु का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ये की संस्था है जिसमें शिव बाबा का अवसान का दिन नहीं है, अंतिम है ना जो पुण्यतिथि नहीं है। दो अद्भुत बातें यहां पर हैं। तो उन्होंने का दोनों का, बाप का दादा का चरित्र कैसे रहा, कैसे पलटाया जीवन को, किन शक्तियों का उनमें बाबा ने दान दिया, सहयोग दिया। एक योग की विधि सिद्धि गहरी, क्योंकि हम समझते हैं योग बाबा की याद जरूर है, परंतु बाहरी दुनिया में योग क्या मानते हैं, किसको मानते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन कैसा होता है, क्या वंडरफुल पुस्तकें हमारे जगदीश भाई ने लिखी। हम एक हमारी उधर की भाषा में एक शब्द है आड़ू मुट्ठा द गिडविल उल्ला बोलते हैं, जना ये बकरी होती है ना, हर झाड़ का पत्ता खाती है, ऐसा कोई झाड़ नहीं जिसको बकरी ने टच न किया हो, बरोबर, ऐसा कोई विषय नहीं जिसे जगदीश भाई ने टच ना किया हो। थे तो वो आर्ट ग्रेजुएट, परंतु साइंस की इतनी वंडरफुल बातें, लीगल की इतनी वंडरफुल बातें उन्होंने लिखी, वो तो बाबा उनमें था, परंतु वो हम उसको वैल्यू नहीं देंगे तो कहां से शक्ति हमारे अंदर आएगी और हम मास्टर कहलाएंगे उसमें। शक्ति बोलते ना, ज्ञान कहा जाता है, क्या है ज्ञान? ज्ञानम एव पराशक्ति, ज्ञानम एव पराशक्ति है ज्ञान, माना सुप्रीम पावर है। तो ज्ञान अभी है ना हमको ज्ञान, कोई ऐसा बाबा का भाई बच्चा नहीं होगा जो आत्मा के बारे में, बार परमात्मा के बारे में बोल नहीं सकता हो। बोलने के लिए फिर बाबा ने कहा ये चित्र रखो सामने, बस सब बोल सकते हो। चित्र भी इतने वंडरफुल दिए साप्ताहिक कोर्स के। तो ये अध्ययन हुआ और प्रवचन, बोलने में भी कंजूसी मत, थोड़ा बोलो पर समझ के बोलो कि ये क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है। तो बोलने से क्या होगा सामने वाले को, ईच वन टीच वन जो बोलते हैं, उसमें भी कभी आलस्य नहीं होना चाहिए, क्यों बोलना नहीं, बोलो ना, नहीं नहीं वो सुनते नहीं है, हमने सुना तो वो भी सुनेगा, क्योंकि हम भी उसी तबके के हैं, उसी समाज के, उसी परिवार के हैं, और हम ऊपर से थोड़े ही टपके हैं इधर। वो नहीं सुनता है जी, वो माया का मुरीद है। नहीं, ये हमारी गलत धारणा है। कोई माया का मुरीद हमारा संबंधी नहीं हो। हम अभी 10-11 दिन दिल्ली में थे, तो हम सबसे पूछते थे कि भाई आपके परिवार के लोग जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं, वो सतयुग में स्वर्ग में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल नहीं चलते ज्ञान में। तो वो कहते नहीं जी, वो नहीं चलते हैं, हम अकेले चलते हैं, वो रावण की औलाद हैं, माया के मुरीद हैं, सुन वो नहीं पत्थर हैं, क्या क्या हैं, हैं हम जो पत्थर हैं, मुरीद हैं, औलाद हैं, उनसे पूछते हैं आपके वो कहाँ गए? गए ओम शांति में, बाबा बाबा बोलते हैं, इतना तो नॉलेज है ना उनको, इतना तो नॉलेज है। और है वो हमारी परीक्षा कर रहे हैं, ये कहां तक चल सकते हैं, हम देखना चाहते हैं इनमें कितनी ताकत है जो कलियुगी शक्तियों को सामना कर करके विजयी बन सकते हैं, वो हमारी टेस्ट कर रहे हैं। और सतयुग में तो 33 करोड़ पोस्टिंग्स है ना 33 करोड़ पोस्टिंग है, इतनी रिक्रूटमेंट तो उसमें कोई ना कोई होगा ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं आप इस बात से जब निश्चिंत हो जाएंगे ये नहीं आता है, उस दिन हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। नहीं तो हमारी आधी शक्ति उधर कंज्यूम होती है, आप देखिए सोचकर हमारी शक्ति वहां जाती है, क्योंकि सोच चलती ये नहीं आया जी, वो आ ही नहीं रहा है, अंदर में मन कसोटता है, झकझो अरे क्यों वो हमारा है ना, वो नहीं आ रहा है। पर आप रुक जाओगे, फिर स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे, जाने वाले चले जाएंगे, आप उनको ही देखते रहेंगे, वो नहीं आ रहा है, आप आगे चले जाओ, क्योंकि आपकी पोस्टिंग पहले हो चुकी है ना, तभी तो यहां आ गए। अब ये अंदर हमारे विश्वास हो गया है कि हम चलो पहले नारायण न बने, बाबा बने, उनका बृहद परिवार होगा ना, परिवार के सदस्य तो हम बनेंगे ही बनेंगे। तो इस ऐसी एक आंतरिक शक्ति हमारे अंदर प्रादुर्भाव इमर्ज होनी चाहिए। हम छोटी बातों को लेकर के हमारे नहीं, वो रक्त संबंध फिर तो मोह ही हो गया ना। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, सब छोड़ो। परंतु गीता में जो बोला उसने लास्ट में क्या बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, वो हम बोल सकते, अर्जुन नहीं बोला। अर्जुन तो यदि कोई बोलता है अर्जुन बोला तो गलत बोला, क्योंकि वो ऐसा बोला, युद्ध शुरू हुआ, अभिमन्यु मरा, तो कहता है अभिमन्यु मरा तो मैं क्यों जीऊं, मैं भी मरूंगा, उसकी चिता में ये भी भस्म होने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा महाभारत बोलता है। तो क्या फायदा हुआ बोल करके? और यहां हमने देखा कि बाबा की जसोदा माता, बाबा बोलती थी, वो बोलता था बच्ची क्या कर रही हो, बाबा पोछा लगा रही हो, दैट वंडरफुल। कितना एक तो श्रीमंत की से मोह छूटा, संबंध से मोह छूटा, ऐसा व्यक्तित्व हमारे परिवार का व्यक्ति है, ये वंडरफुल है। जो बहू ससुर के सामने कभी वो नहीं निकालती पल्लू, वो उसके कांधे पर हाथ रख करके ब्रिजेंद्र दादी ठहरती है, कितना वंडरफुल लगता है। क्या मोह जीता होगा उन्होंने, हम उसी परिवार के हैं ना, हमारा वो परिवार है, इसीलिए हम कहते हैं अद्भुत जीवन कहानी है, हम उस परिवार के सदस्य हैं। तो जो जो मेरा मेरा बोलते थे, आप बाहर की दुनिया में लगता है कोई मेरा नहीं है, हम अकेले पड़ गए, वो रो रहे हैं, हम नहीं रोना चाहिए कि हम अकेले पड़ गए, नहीं हमारे साथ इतना बृहद परिवार है, बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। ये हम ब्राह्मण कुल अगर ना, हमको पत्र जो लिखते थे पहले उसमें लिख ब्राह्मण कुल भूषण, देखिए ये हमको पत्र आते थे तो ब्राह्मण कुल भूषण है ना, ब्राह्मण कुल के भूषण। तो हम कहे कि हमारे अंदर शक्ति नहीं होने, शक्ति तो बहुत है, परंतु उसको हमको यूज करना आना चाहिए। और ये बाबा आप देखेंगे, निर्मल शांता दादी, जानकी दादी और कईयों को बाबा कहता है अच्छा बच्ची ने शरीर को चलाना सीख लिया, सुना आपने? ये क्या है, सारी दुनिया में शरीर आत्मा को चलाता है। डायबिटीज पेशेंट हो जाता है, रसगुल्ला देखेगा खा तो लेना चाहिए इसको, और डॉक्टर बोला मत खाओ, नहीं वो निचोड़ के खा लेंगे। क्या हुआ, नहीं वो ऐसा ऐसा करते है, गुटखा नहीं खाते, रसगुल्ला तो खाने दो, ऐसा समझते हैं हम लोग, ऐसे होते हैं, ताकत नहीं है ना, ताकत नहीं है। पर बाबा के बच्चे होते हैं तो छोड़ दिया ना। सारा भारत, मैंने कहा सारा भारत रो रहा था, 100 रुपये प्याज है, ब्रह्मा कुमारी खुश थे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इतनी ताकत तो आई कि दुनिया रो रही है और हम हंस रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं उससे। नहीं तो कहते खाना उसके बिगैर बन कैसे सकता है, बन सकता है जबकि तुम अपनी एनर्जी उसमें लगाओ, शक्ति उसमें लगाओ, प्यार उसमें लगाओ, स्नेह उसमें लगाओ, समझ उसमें लगाओ कि ये अन्न न जाता, ये अन्न से मन बनता है, तो मैं अन्न को शुद्ध बनाती हूं। मन से अन्न शुद्ध होता है, अन्न से मन शुद्ध होता है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो इतनी मेहनत हमको कर शक्ति देता है, वो अन्न शरीर को ही शक्ति नहीं देता बल्कि आत्मा को भी बल देता है, क्योंकि शरीर में आत्मा है। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, वो बोलते हैं, हम बोलते हैं मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी उनका स्लोगन है, हम कहते साउंड बॉडी इन माइंड साउंड होना चाहिए। मन विचलित है, मन, अब मन क्या है, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट का स्टूडेंट रहा, आप किसी साइकोलॉजिस्ट व्हाट इज माइंड, वो कहता है डजंट मैटर, व्हाट इज मैटर डोंट माइंड। अभी तक भी कोई साइकोलॉजिस्ट मन कहां है शरीर में वो ढूंढ नहीं पाया, नॉट, वो लोकेट ही नहीं कर सक रहे। अब हमको पता है कि मन कोई चीज है ही नहीं, मन सोच को बोला जाता है, और जब सोच हमारी आत्मिक बन जाती है तो वो सशक्त बनती है, दैहिक बनी तो वो अशक्त होती है। जितने लोग देह के पीछे पड़े रहे वो एक दिन रोते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, कुछ हो जाता है वो रोते रहते हैं, है ना, रोते हैं ना। देखिए आप किसी को पूछिए क्या है, कैसे हाल, क्या करना, इधर दर्द है, इधर भी दर्द है, वो बोलने में वो समझते हैं तसल्ली हो रही है हमको। अब हमको कोई पूछते हैं कैसे हैं, वो मस्त है, हरफन मौला है, बेफिक्र बादशाह है, है ना, कोई वेट करके बोलेगा नहीं बोलेगा। तो ऐसा इतनी ताकत हमको मिल रही है, शक्ति, ये एहसास नहीं है हमको, हम मास्टर सर्वर शक्तिवान के पीछे पड़े, हमको शक्ति अंदर में है और भी लेनी जरूर है, इतने यहाँ को पूरा हो गया, पर वह शक्ति हमको शरीर चलाने में काम आती। क्यों शरीर चलाना चाहिए, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा में कुछ नहीं कर सकती। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म धर्म साधना के लिए यदि प्रथम स्थान किसी का है तो वो शरीर का है। आत्मा कुछ धर्म माना धारणा करना चाहती है, दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की, आध्यात्मिकता की धारणा करना चाहती है, तो वो धारणा करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर के बिना बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है और हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर ये शरीर ठीक ठाक रखना हमारा कर्तव्य है। इसको कोई हम पनिशमेंट नहीं देते हैं, व्रत उपवास, वो पानी में बैठा धूप में बैठा, ऐसा नहीं करते हैं, है ना, उपवास हम नहीं करते। हम जब ज्ञान में आए तब हम एकादशी जरूर करते थे, पाक्षिक की एकादशी, और वो हमने वो बहन से पूछा कि हम एकादशी का उपवास करते हैं, तो कहा 14 दिन तक आप उसको खूब ठूंसते हो, खाया खाया खाया, खाऊं खाऊं करते हो, 15वें दिन बोलते हो आज तेरे को भोजन मिलने वाला नहीं है, तो अंदर शंख लगाता है, ला कुछ तो दे। तब ये शुरू किया इन्होंने, वही भगर खाया, साबूदाना खाया, पेड़ा खाया, मौज खाया, वो फल खाया, 2 रुपए के बजाय 20 रुपए लग गए, वो तकलीफ और ही झेलता है बेचारा। पहले तो 2 रोटी में ही काम चलता था, दादी जानकी जैसे कहती है 2 रोटी 2 कपड़ा 2 गज जमीन। तो हम इसीलिए हम कहा ठीक है ये बात, वो संस्कृत में था, हम पढ़ते थे हितभुक मितभुक, मितभुक थोड़ा खाओ, पर अच्छा खाओ, हित 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 होना, वैसा भोजन लो और मित थोड़ा खाओ। पढ़ते थे और वो जो नेचर क्यूर वाले होते थे, आधा पेट खाओ, पाव पेट पानी भरो, पाव पेट छोड़ दो हवा के लिए, सुनते थे परंतु अलग ही होता था। अब ज्ञान में आए तो मेरा विश्वास है हरेक का भोजन करने का जो वो था ज्यादा, वो कम होता जाता है। जो चार रोटी खाता था, मैंने देखा है हमारे यहां भी देखा है, तो दस दस बारह बारह चपाती खा जाते हैं, पर धीरे 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 कम होता है। योगी का लक्षण है उसको भूख कम लगती है, और जो खाते हैं वो एनर्जी बनती है और वो अच्छी तरह से सेवा कर सकता है, उसे कभी थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्राप्ति सामने रहती है। मुझे ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ मिलती है जिसमें शक्ति ही शक्ति है, और हमारे अंदर जो बोलते हैं ट्रेमेंडस एनर्जी है, और वो हम समझते कोई और ही सकता है नहीं, हम अनुभव करते हैं, हमारी वाणी में डिफरेंस आ गया, आना चाहिए सच में। तो नहीं तो क्या होता है, आपने कहा घर वालों की बात मैं कर रहा था, वो कहेंगे ये है ना, ये अम्मा जी हमारी, आपके पास ओम शांति बोलती है, घर में आके बहुत अशांति करती, हम देख रहे हैं, इसको पहले बोलो घर में शांति रख। तो ये एक आता है ना कॉम्प्लेंट, इसको हम क्योंकि घर में हमारा माथा ठन जाता है, तने ये क्या नर्वस सिस्टम है ना, वो खींच जाता है, ये सब वही लोग हैं, यहां आ गए हम, ऐसा फील करते हैं, ड्रामा फील करते हैं, क्योंकि वो समझ हमारी शक्ति वहां जैसे ड्रेन हो गई, हम भूल ही गए कि हम क्या हैं, कौन हैं, किसके हैं। जैसे दादी कहती है मैं कौन, मेरा कौन, तो हम वो वहां जैसे भूल से जाते हैं। नहीं, वो याद रखना ही शक्ति फ्लो करने का आधार है। बाबा इसलिए कहता है ये जो आत्मा का पाठ है, पहला भी है और अंतिम भी है। अंतिम यह है कि आत्मा की जो स्टेज है कर्मातीत की, माना आप देखेंगे धीरे धीरे बाबा के बच्चों को काम कम मिलता है, कम होता जाता है। फिजिकल जो वर्क हम करते थे, कल भागदौड़ जो करते थे, शारीरिक प्रक्रियाएं जो होती थी, वो अब जैसे धीरे धीरे हमारी कम होती जाती है, और हमारे जो कर्तव्य थे दूसरे अपने आप और निभाते चले जाएंगे, निभाएंगे भी। इसीलिए जो शक्तियां मिली हैं उन शक्तियों का प्रयोग हम क्या कहां करेंगे, तो बाबा कहते हैं और शक्तियों को अंदर धारण करने, थोड़ी एनर्जी आ जाती है तो उस शक्ति के आधार पर और ही शक्ति को अंदर हम जज्ब करेंगे, असिमिलेट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो हम अनुभव करते हैं करेंगे कि हम जैसे कि बहुत शक्तिवान है, और फिर हम ये जो मोह माया की दुनिया है खींचती जरूर है, परंतु उस खींच से जितना बाहर निकलने की कोशिश करना, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि अभ्यास से, अध्ययन से कर सकते हैं, और जितना हम गहराई में जाएंगे ज्ञान के, उतना जैसे कि हमारे अंदर परिपक्वता आती जाएगी, हम सशक्त अनुभव करेंगे। और जैसे अभी एक टॉपिक थी फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, हम हमारे भविष्य को बिना कोई भय के अनुभव कर सकते हैं, ऐसा होगा। ओम शांति। जब तक वो बहन जी मेरे को बोली 10-5 मिनट, अरे आने दीजिए, तब तक एक आध प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। वो आए आप करेंगे प्रश्न है, सब प्रसन्न चित्त आत्मा है जी आप। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। दोनों भी मत करो, क्योंकि मैं बताऊं हम वो महाराज बोलते हैं जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री, ऐसा लिखो, वो कापियां भर भर के इतनी लाए, वो बना के उस पर कट्टा बनाया, उस पर फिर राम की मूर्ति प्रतिष्ठापित की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हमको लिखना है ना बोलना है मुंह से। मैंने इसीलिए कहा कि हम एक अनुभव करें और फिर अनुभव क्या होता है, नहीं हम, मैंने कहा प्रैक्टिकली जो हम फील कर रहे हैं, हम बहुत शक्तियां हमारे पास हैं, और भी करना है तो ज्ञान की गहराई में जाना है। ये जो बाबा के पुस्तकें हैं वो पढ़नी है, बाबा की मुरली दिन में एक बार एक ही पेज पढ़िए, आप अनुभव करेंगे मेरे अंदर शक्ति आ रही है। कभी ये मैं कभी बोल देना मैं आत्मा हूं, मैं शांत, ए चुप बैठ रहे, मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं होने। और ये हम जी आप रखिए ही नहीं ना। नहीं मैं वही बोल रहा हूं, स्लिप तो होगा ही होगा, क्योंकि बताए ना बाबा जो बोलता है स्मृति नहीं बोलता है। आप देखेंगे बाबा जो शब्द प्रयोग करता है वो है स्मृति स्वरूप, स्मृति नहीं है, स्मृति स्वरूप। आत्मा की स्मृति, आत्मा का भी स्मृति स्वरूप होना जरूरी है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं, एक बहन यहां नीचे थी वो बोलती थी देखो जी हम तो निर्मोही है, मैं क्यों बोलूं मेरे पति का नाम ये है, मैं क्यों बोलूं मेरे बेटे का है नाम ये, नाम भी बोलती थी वो, फिर बोलती थी मेरा मोह किसी में नहीं है। नहीं ये नहीं, ये तो हो गया ना वो गंगाराम नल पर मत बैठ भीग जाओगे तुम, भीग करके फिर वही बोलता था भीग जाओ, ऐसा है। इसीलिए फीलिंग, फीलिंग के अंदर आना नहीं आना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जितना मैं अपने आप को फील करूं, बाबा को फील करूं, तो बाह्य बातों से मेरी फीलिंग। हमारे जगदीश भाई मैं, मेरे को अच्छा याद आता है जैसे कोई दादी आती थी कहते थे दादी जी आ गए, उनका निर्देश है अभी मैं वाणी को पूर्ण कर।
आदरणीय प्रेम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करेंगे।